संयदा एक्स के कई जीवन, गौरव तिवारी 16 सितंबर 2024। कौन हैं ये लोग, कहां से आते हैं ये? जॉली नामक वकील जगदीश त्यागी ने अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी अंतिम दलील में पूछा, जिसमें एक अरबपति के बेटे ने फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को कुचल दिया था। ये दृश्य 2013 में रिलीज हुई जॉली एल्लबी फिल्म का है। फिल्म इस सवाल का जवाब नहीं देती। एक दर्शक के तौर पर मैं भी फिल्म में उठाए गए इस मार्मिक सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं दे पाया, लेकिन हाल ही में मैंने पत्रकार नेहा दीक्षित की पहली किताब द मेनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स, जगरनॉट पब्लिशर्स 2024, पढ़ी और मुझे लगा कि जॉली एलएलबी के सवाल का जवाब क्या हो सकता है। नेहा दीक्षित एक स्वतंत्र पत्रकार है जो पत्रकारों की उस प्रजाति से संबंधित है जो लगातार कम होती जा रही है, जो जमीन से जुड़ी हुई है, लोगों से जुड़ी हुई कहानियां प्रकाशित करती हैं और सत्ताधारियों द्वारा किए जाने वाले जबरदस्त उत्पीड़न का साहसपूर्वक सामना करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे साहस और दृढ़ विश्वास की नायिका है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका सुचेता दलाल के शब्दों में एक पत्रकार का काम है जांच करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना, बड़े व्यवसायों से दबाव महसूस करना और फिर जो आप लिखते हैं उसके साथ खड़े रहना या उसके लिए लड़ना, जिसका उदाहरण नेहा दीक्षित है। नेहा दीक्षित की पत्रकारिता में सुचेता दलाल द्वारा बताई गई रिपोर्टिंग और उसके परिणाम स्वरूप उत्पीड़न के बहुत से उदाहरण हैं। उन्होंने 2016 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर कहानियों की एक श्रृंखला लिखी और वे अभी भी अदालती मामलों का सामना कर रही हैं। उनका पीछा किया गया है और उन्हें बलात्कार और मौत की धमकियां मिली हैं। 2014 से जब भारत में पत्रकारों का एक बड़ा हिस्सा, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में, सरकार या प्रतिष्ठान को परेशान करने वाली खबरें करने के बाद अक्सर पत्रकारों को होने वाले जोखिम और परेशानियों से बचने के लिए सक्रिय रूप से आराम, सुरक्षा और परेशानी मुक्त जीवन की तलाश कर रहा था, नेहा ने स्वतंत्र पत्रकारिता करने का फैसला किया, जिससे मीडिया में उन मानवीय आवाजों को जगह मिली जो आम तौर पर मुख्य धारा के मीडिया में नहीं आती है। सैयदा एक्स की कई जिंदगियां एक विस्तृत पुस्तक है जो जमीन पर कई वर्षों के श्रम साध्य शोध का परिणाम है। सैयदा वाराणसी में एक बुनकर परिवार में पैदा हुई एक मुस्लिम महिला है जिसकी शादी कम उम्र में हो गई थी। सैयदा का जन्म 70 के दशक में हुआ था और जब तक वह वयस्क हुई तब तक भारत के आर्थिक क्षितिज ने आर्थिक उदारीकरण की सुबह देखी थी। पुस्तक में सैयदा के जीवन और वर्षों के सफर का पता लगाया गया है। सैयदा का जीवन भारत में अनौपचारिक रोजगार में लगे 43 करोड़ लोगों के कष्टों से बहुत मिलता जुलता है, यही इस पुस्तक का महत्व निहित है। सैयदा, जो बहुत कम पढ़ी लिखी और बहुत कम स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, ने 15 साल की उम्र में युवा अकमल से शादी की जो किशोरावस्था में एक कुशल बुनकर था। अभी भी 20 के दशक की शुरुआत में वह अपने पति और 3 बच्चों, 2 बेटों और 1 बेटी के साथ वाराणसी छोड़कर दिल्ली आ गई। अकमल का परिवार मंदिरों के शहर में हथकरघा साड़ियां बनाने के लिए वाराणसी के एक पड़ोसी जिले से आया था, जिसे लोकप्रिय रूप से बनारसी साड़ियों के रूप में जाना जाता है। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुए दंगों में परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया। किसी भी रोजगार के अवसर से वंचित और जिला प्रशासन की मनमानी का सामना करने वाले अकमल, जो एक कुशल कारीगर है जिसने सैयदा की तरह बहुत कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, ने अधिक शांतिपूर्ण जीवन के लिए वाराणसी छोड़ने का फैसला किया। सैयदा, अकमल और उसके 3 बच्चे दिल्ली आ गए और वे लोग बन गए जिनका उल्लेख जॉली एलएलबी ने पहले उल्लेखित फिल्म में अपने समापन तर्क में किया था। झुग्गी झोपड़ियाओं जैसी बस्तियां भारत के हर बड़े शहर की विशेषता है। रेलवे लाइन के किनारे, बड़े फ्लाईओवर के नीचे या मेट्रो शहर से होकर बहने वाली बड़ी बड़ी खुली नालियों के किनारे आप आसानी से कच्ची, किफायती तरीके से बनी आवासीय बस्तियों की घनी कतार देख सकते हैं, जिनमें अनौपचारिक रूप से काम करने वाले लोग रहते हैं जो शहर को चलाते हैं। वे घर की नौकरानियों के रूप में काम करते हैं, छोटे गोदामों या गोदामों में भारी सामान पहुंचाने वाले मैनुअल मजदूर, छोटे उद्योगों के पुर्जे बनाने वाले मजदूर जिन्हें एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या वैश्विक खुदरा दिग्गजों के अदृश्य कार्यबल महंगे ब्रांडेड स्नीकर्स या कपड़े बेचते हैं। अगर आप भी उनकी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, कठिनाइयों या उनके जीवन के किसी अन्य पहलू के बारे में अनभिज्ञ है या उनसे अनजान है, तो इस बेहतरीन किताब से बेहतर कुछ नहीं है। नेहा की लेखनी स्पष्ट है, उनकी लेखनी ध्यान खींचती है और आकर्षित करती है। घटनाएं जानी पहचानी और संबंधित है। आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो किताब के पात्रों से काफी मिलते जुलते हैं। आप कहानियों से जुड़ाव महसूस करेंगे क्योंकि वे ऐसे लोगों और उनके जीवन के बारे में हैं जिन्हें हमने समय समय पर देखा या देखा है, लेकिन उनके अस्तित्व की सही प्रकृति का एहसास नहीं किया है। मेरे अंदर का बरनासी, मेरा सबसे मुखर और पहचाने जाने वाला हिस्सा, सैयदा के जीतने और हीरो बनने का इंतजार कर रहा था। अगर यह काल्पनिक होता तो यह किताब का स्वाभाविक अंत हो सकता था, लेकिन हम एक क्रूर दुनिया में रहते हैं जहां हम हर दिन अपनी योग्यता साबित करने के लिए संघर्ष करते हैं और अपनी गलतियों के आधार पर न्याय न किए जाने का प्रयास करते हैं और एक इंसान के रूप में अपनी सभी खामियों के साथ स्वीकार किए जाने का प्रयास करते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। अंत में हर किसी की तरह हम नेहा को भी सैयदा से दूर होते हुए देखते हैं। एक साथी बनारसी सैयदा के साथ इस तरह का व्यवहार देखकर मेरा दिल दुख गया, लेकिन कुल मिलाकर द मेनी लाइव्स ऑफ सैयदा एक्स सैयदा और उनके जैसे लोगों के प्रति सहानुभूति का एक जोरदार बयान है और उनके संकल्प, निस्वार्थता और प्रतिबद्धता के लिए एक सलाम है। यह एक ऐसी किताब है जिसे मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश में गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के जीवन को समझने और उनसे जुड़ने का अवसर देती है। सुनने के लिए धन्यवाद।